एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो दोस्ती, अन्याय और आवाज उठाने की हिम्मत की कहानी कहता है। हम बात कर रहे हैं कैथरीन स्टॉकेट के 2009 के उपन्यास द हेल्प की।
जी,
ये कहानी हमें ले जाती है 1960s के दशक के जैक्सन, मिसिसिपी में।
ये एक ऐसा दौर था जब समाज नस्ल के आधार पर मतलब बुरी तरह बटा हुआ था। बदलाव की आहटें तो थीं, पर जमीन पर कुछ भी बदलना आसान नहीं था।
बिल्कुल, ये जिम क्रो कानूनों का अमेरिका था, जहां हर चीज, स्कूल, बसें, यहां तक कि बाथरूम भी रंग के आधार पर अलग अलग थे।
अच्छा।
और इसी माहौल में लेखिका कैथरीन स्टॉकेट पली बढ़ी। दिलचस्प बात तो यह है कि उनका अपना बचपन भी एक अश्वेत घरेलू सहायिका की देखरेख में गुजरा था।
तो मतलब यही व्यक्तिगत अनुभव इस उपन्यास की आत्मा बनता है। हाँ, पर इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिस पर आज भी बहस होती है।
कौन सा सवाल?
कि क्या एक विशेषाधिकार प्राप्त श्वेत लेखिका अश्वेत महिलाओं के दर्द और संघर्ष को प्रामाणिकता से बयान कर सकती है?
ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और हम इस पर आगे जरूर लौटेंगे।
जी,
लेकिन पहले कहानी के दिल में उतरते हैं। ये तीन औरतों की कहानी है
जिनकी दुनियाएं अलग है,
हाँ, पर जिनकी तकदीरें एक खतरनाक और साहसी प्रोजेक्ट के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाती हैं।
और उपन्यास की सबसे खास बात है इसका नजरिया।
पूरी कहानी हमें तीन अलग अलग किरदारों की आंखों से दिखाई देती है, एबिलीन, मिनी और स्कीटर। तो चलिए पहले इन तीन महिलाओं से मिलते हैं।
तो सबसे पहले है एबिलीन क्लार्क, 53 साल की एक अश्वेत सहायिका जिनके स्वभाव में एक गहरी शांति और ठहराव है। लेकिन इस शांति के नीचे अपने इकलौते बेटे ट्रेलर को खोने का एक अथाह दुख भी दबा हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 17 श्वेत बच्चों की परवरिश में गुजार दी है और फिलहाल वो एलिजाबेथ लीफोल्ट के घर उनकी बेटी मे मोबली की देखभाल करती हैं।
और एबिलीन का मे मोबली के साथ जो रिश्ता है वो तो दिल छू लेता है।
बिल्कुल,
क्योंकि मे की अपनी माँ उसे लगातार नजरअंदाज करती है और एबिलीन उस बच्ची के लिए एक तरह से माँ की छांव बन जाती है।
जी, और वो उस बच्ची के मन में आत्मविश्वास भरने के लिए एक मंत्र की तरह दोहराती हैं।
यू इज काइंड, यू इज स्मार्ट, यू इज इम्पोर्टेंट।
हाँ, तुम दयालु हो, तुम होशियार हो, तुम महत्वपूर्ण हो।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस भावनात्मक मेहनत को दिखाती है जो ये महिलाएं करती थी और जिसे उनके काम का हिस्सा कभी नहीं माना गया।
सही बात है।
और जहाँ एबिलीन शांत नदी की तरह है, वहीं उनकी सबसे अच्छी दोस्त मिनी जैक्सन, वो तो एकदम आग का गोला है।
अच्छा।
35 साल की मिनी को पूरे जैक्सन में सबसे बेहतरीन खाना बनाने वाली माना जाता है, लेकिन अपनी तेज जबान और किसी के आगे न झुकने वाले स्वभाव की वजह से वो कहीं टिक नहीं पाती।
हाँ, और उनकी अपनी जिंदगी भी कांटों भरी है। उनका पति शराबी है और उनके साथ मारपीट करता है। मतलब वो बाहर की दुनिया से भी लड़ती हैं और घर के अंदर भी।
तो एक तरफ ये दो अश्वेत महिलाएं हैं जो व्यवस्था के अंदर रहकर रोजाना संघर्ष कर रही हैं, और फिर
आती है यूजीनिया स्कीटर फीलन,
एक 22 साल की श्वेत लड़की जो कॉलेज से ताजा ताजा पढ़कर लौटी है और एक लेखिका बनने के सपने देखती है।
और वो अपनी सहेलियों के बीच खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करती है, क्योंकि उनकी दुनिया तो शादी, पार्टियों और सामाजिक रुतबे तक ही सीमित है।
जी, स्कीटर कुछ बड़ा करना चाहती है पर उसे रास्ता नहीं पता।
और उसे रास्ता दिखाती है एक तलाश,
कॉन्स्टेंटाइन की तलाश, वो प्यारी अश्वेत सहायिका जिसने स्कीटर को माँ की तरह पाला था। जब स्कीटर कॉलेज से लौटती है तो पाती है कि कॉन्स्टेंटाइन रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है और कोई भी, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी, उसे सच बताने को तैयार नहीं है। और यही खोज स्कीटर को उस समाज के पाखंड पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है।
बिल्कुल।
और समाज और उसके पाखंड का सबसे बड़ा चेहरा है हिली होलब्रुक।
अरे हाँ, वो जैक्सन की सामाजिक बिसात की रानी है जिसके एक इशारे पर नियम बनते और बिगड़ते हैं।
हिली इस उपन्यास में उस नस्लीय घृणा का प्रतीक है जो तहजीब के लिबास में छिपी होती है।
और इसका सबसे घिनौना उदाहरण है उसकी होम हेल्प सैनिटेशन इनिशिएटिव।
हाँ, वो पहल जिसके तहत वो हर श्वेत घर में अश्वेत सहायिकाओं के लिए एक अलग बाहरी बाथरूम बनवाना चाहती थी।
उसकी दलील थी कि अश्वेत लोग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं।
कितना भयानक और बेतुका विचार है।
यही तो, ये उस समाज की सोच को नंगा कर देता है जो अपने बच्चों को पालने के लिए तो इन महिलाओं पर पूरा भरोसा करते थे,
लेकिन उनके साथ एक ही शौचालय इस्तेमाल करने से डरते थे। और यही बेतुकापन कहानी का शुरुआती बिंदु बनता है। स्कीटर को स्थानीय अखबार में सफाई पर कॉलम लिखने का काम मिलता है
जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता।
हाँ।
तो वो मदद के लिए एबिलीन के पास जाती है
और यहीं से एक छोटा सा सवाल जवाब का सिलसिला एक बहुत बड़े खतरनाक और क्रांतिकारी विचार को जन्म देता है।
एक किताब लिखने का विचार। एक ऐसी किताब जो दुनिया को ये बताएगी कि जैक्सन मिसिसिपी में एक अश्वेत घरेलू सहायिका होने का मतलब क्या होता है।
उनकी अपनी जुबानी,
उनकी अपनी कहानियां। पर जाहिर है शुरुआत में सब डर जाती हैं। एबिलीन जानती थीं कि ऐसा करना मौत को दावत देने जैसा है।
उस दौर में सच बोलने की कीमत तो जान से चुकानी पड़ती थी।
जी।
लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एबिलीन जैसी शांत स्वभाव की महिला इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो गई?
एक धर्मोपदेश। चर्च में पादरी साहस और सच के रास्ते पर चलने की बात करते हैं और एबिलीन को लगता है जैसे जैसे ईश्वर ने उन्हें एक इशारा दिया है।
अच्छा।
उन्हें एहसास होता है कि चुप रहकर भी वो घुट घुट कर ही जी रही हैं, तो वो बहुत डरते डरते चुपचाप स्कीटर की मदद के लिए राजी हो जाती हैं।
उनकी रात की मुलाकातें तनाव और डर के साए में होती होंगी?
बहुत ज्यादा।
और इस आग में घी डालने का काम करती है हेली हॉलब्रुक।
हाँ, जब वो मिनी को नौकरी से निकलवा देती है।
वजह?
सिर्फ इसलिए कि मिनी ने तूफान के दौरान घर के अंदर का बाथरूम इस्तेमाल कर लिया था।
बस इतनी सी बात पर।
हाँ, और यहीं से मिनी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती हैं। लेकिन मिनी का अंदाज एबिलिन से बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाना चाहती,
वो बदला भी लेना चाहती हैं।
हाँ, और यहीं पर कहानी का वो मशहूर हिस्सा आता है जिसे कोई नहीं भूल सकता, द टेरिबल ऑफुल पाई।
अच्छा, वो पाई वाली कहानी।
जी, हेली मिनी को चोर बताकर पूरे शहर में बदनाम कर देती है। इसके जवाब में मिनी एक शानदार चॉकलेट पाई बनाती है और हेली को देती है। हेली बड़े चाव से वो पाए खाती है और जब वो उसकी तारीफ कर रही होती है तब मिनी उसे बताती है कि उस पाए में एक बहुत ही घिनौना गुप्त घटक मिला हुआ था।
ये सिर्फ एक बदला तो नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी।
बिल्कुल, ये उस किताब के लिए एक बीमा पॉलिसी थी।
वो कैसे?
देखिए, मिनी जानती थी कि जब ये किताब छपेगी और उसमें ये पाई वाली कहानी होगी तो हेली अपनी इज्जत बचाने के लिए जोर शोर से इस बात से इनकार करेगी कि ये किताब जैक्सन के बारे में है।
अच्छा।
ताकि कोई ये ना जान पाए कि वो औरत वो खुद है।
हाँ।
वो कभी दुनिया के सामने ये नहीं मानेगी और उसके इनकार करने से बाकी सभी सहायिकाओं की पहचान भी छिपी रह जाएगी। ये मिनी की तरफ से सबको बचाने का एक तरीका था।
कमाल है, मतलब डर और गुस्से से जन्मी एक हरकत सबके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बन गई।
जी।
लेकिन किताब लिखने का ये सफर जो कुछ लोगों से शुरू हुआ था वो एक बड़े आंदोलन में कैसे बदला?
इसका कारण मनी एक त्रासदी। जैक्सन में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मेडगर एवर्स की उनके ही घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
ओह, ये तो बहुत बड़ी घटना थी।
हाँ, और इस घटना से पूरा अश्वेत समुदाय दहल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि अब चुप रहने में भी उतना ही खतरा है जितना बोलने में। जो प्रोजेक्ट एक चिंगारी की तरह शुरू हुआ था वो अब एक मशाल बन जाता है।
और जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है इन तीनों महिलाओं की अपनी जिंदगी भी बदल रही होती है।
जी, स्कीटर अपनी माँ से कॉन्स्टेंटाइन के बारे में वो कड़वा सच जानती है जो उसका दिल तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ मिनी को सीलिया फुट के रूप में एक ऐसी दोस्त मिलती है जहाँ दोस्ती की कोई उम्मीद ही नहीं थी।
सीलिया जिसे समाज ने बाहर कर रखा है।
हाँ, और वो मिनी को सिर्फ एक सहायिका की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखती है। उनकी दोस्ती इस उपन्यास का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है।
वो नस्ल और वर्ग की सारी दीवारों को तोड़ देती है।
हाँ, वो दोनों एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाती हैं।
और फिर किताब छप कर आती है। हेली अपना आखिरी दांव तो चलती ही है।
हाँ, वो एबिलीन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें उनकी नौकरी से निकलवा देती है।
लेकिन इस बार की एबिलीन कहानी की शुरुआत वाली एबिलीन नहीं है।
बिल्कुल नहीं, इस बार वो टूटती नहीं है। वो पहली बार हेली की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देती हैं।
नौकरी खोकर भी उन्होंने अपनी आवाज और अपना आत्मसम्मान पा लिया था।
यही बदलाव तीनों के जीवन में आता है। मिनी किताब से मिले पैसों और नए आत्मविश्वास के साथ अपने हिंसक पति को हमेशा के लिए छोड़ देती है।
और स्कीटर
जैक्सन की घुटन भरी दुनिया को पीछे छोड़कर न्यूयॉर्क में अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ती है।
तीनों महिलाओं ने अपनी पुरानी जिंदगी को जलाकर उसकी राख से एक नई शुरुआत की थी।
जी।
ये कहानी सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये कई गहरे विषयों को हमारे सामने रखती है। सबसे बड़ा तो यही है कि कहानी कहने में, अपनी सच्चाई बयान करने में कितनी ताकत होती है। ये चुप्पी को तोड़ने का एक हथियार है।
बिल्कुल, ये बताती है कि अपनी कहानी सुनाना एक राजनीतिक और आप कह सकती हैं क्रांतिकारी काम हो सकता है।
इसके अलावा दोस्ती का विषय भी है।
एबेलिन और मिनी की अटूट दोस्ती और मिनी और सीलिया की वो अप्रत्याशित दोस्ती, ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल समय में इंसानी रिश्ते ही सबसे बड़ी ताकत बनते हैं।
और मातृत्व का वो विरोधाभास भी बहुत मार्मिक है।
हाँ, जहाँ ये महिलाएं श्वेत बच्चों पर अपना सारा प्यार लुटा देती हैं, जबकि उनके अपने बच्चे शायद उस प्यार के लिए तरसते रह जाते हैं।
अब उस सवाल पर लौटते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। उपन्यास की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ये आलोचना हमेशा इसके साथ जुड़ी रही
कि ये एक श्वेत लेखिका का नजरिया है।
हाँ,
तो इस किताब की विरासत को यह सवाल आज कैसे प्रभावित करता है?
देखिए, ये एक बहुत ही जायज और जरूरी आलोचना है। कई आलोचकों का मानना है कि उपन्यास अंत में एक वाइट सेवियर की कहानी बन जाता है।
मतलब जहां स्कीटर जैसी एक श्वेत महिला आकर अश्वेत महिलाओं का उद्धार करती है।
जी, और ये भी कहा जाता है कि उपन्यास नस्लवाद की भयावहता को कुछ हद तक सरल बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है
कि इस किताब ने करोड़ों लोगों तक उस दौर की कहानी पहुंचाई।
हाँ, जिस तक शायद वो कभी नहीं पहुंचते।
इसने एक बातचीत शुरू की। शायद हम इसे एक गेटवे या दरवाजे की तरह देख सकते हैं,
जो पाठकों को इस विषय पर और ज्यादा गहरे और प्रामाणिक साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
बिल्कुल, जैसे कि अश्वेत लेखकों द्वारा लिखे गए साहित्य को।
तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में कितना साहस लगता है
और कैसे सच कहने का एक छोटा सा कार्य भी बदलाव की एक शक्तिशाली लहर पैदा कर सकता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।